गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्भियमा पुरो विभु निर्मायसे ते जदमोऽसपूरुषः भुङ्क्ते गुणान्षोडशषोडशात्मकं स्वलङ्कृशिष्टं भगवान् वचंसि मे। जन्तः प्रविष्टममवाच इमं प्रसुप्ता सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्येश्च प्राणान्नमा भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जत्कीर्तनं जत्स्मरणं जदीक्षणं जद्वन्दनं जत्श्रवणं जदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मष तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नौमा स्कंद अध्याय 19 श्लोक संख्या 16। या दुस्तजा दुर्मतिभिः जियतो या न जीयते तं तृष्णा दुःख निर्वाहम् सर्म काम द्रुतं त्यजे। जादुस्तजादुर्मतिभिर्ज्रियतो या न ज्रियते तं तृष्णा दुःख निर्वाहम् सर्म काम द्रुतं त्यजे। यादुस्तजादुर्मतिभिः ज्रियतो या न जीर्यते तं तृष्णां दुःख निर्वाहम् सर्म काम द्रुतं त्यजे। जीयते न जीयते तं तृष्णा दुःख निर्वाहम् माता जी माता जी
शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ बोलिए या जो दुस्तजा जिसको छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, दुर्मति भी भौतिक भोग में अत्यधिक आसक्त व्यक्तियों द्वारा जिर्यतः वृद्धावस्था के कारण अत्यंत आसक्त द्वारा भी जा जो ना नहीं जिर्यते नष्ट होती है, ताम ऐसी तृष्णाम इच्छा को दुख निवाहम सारे दुखों का मूल कारण शर्म कामः अपने सुख का इच्छुक व्यक्ति द्रुतम शीघ्र ही त्यजे छोड़ दें। अनुवाद, जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहां तक कि वृद्धावस्था के कारण असक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसे अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है, अतृप्त इच्छाएं। तात्पर्य, हमने पश्चिम देशों में वास्तविक देखा है कि जो लोग 80 वर्ष से भी अधिक के हो चुके हैं वो भी नाइट क्लब में जाते हैं और शराब पीने तथा स्त्रियों की संगति करने में काफी धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने की दृष्टि से अति वृद्ध रहते हैं किंतु उनकी इच्छाएं वा तृष्णाएं नहीं मरती हैं। जो इंद्रिया तुष्टि का साधन है उस शरीर को भी समय जर्जर बना देता है किंतु वृद्ध तथा असक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो अपनी इच्छाओं की अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इधर उधर मरा मरा फिरने पर विवश हो जाता है। अतः भक्ति योग की अभ्यास से मनुष्य को अपनी कामेच्छाएं त्याग देनी चाहिए, जैसे कि श्री जमुनाचार्य ने बतलाया है, जदवधि मम चित्त कृष्ण पदारविंदे नवनम रसधामनी उद्यतम रंतुमासित तदवधीवतनारी संगमे स्मर्ज्यमाने भवती मुखविकार शुष्ट निष्ठवनंच। जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित बन जाता है तो उसे कृष्ण के लिए कार्य करने से अधिक अधिक सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर विशेष रूप से विषय भोग पर थू थू करता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषय जीवन में नहीं रहती, कृष्ण भावनावृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छाओं को दमित किया जा सकता है। हरे कृष्ण। तो ये काम जगत में प्रत्येक जीव ये संघर्ष कर रहा है एक प्रेम प्राप्त करने के लिए, लेकिन बहुत दुर्लभ। लेकिन मनुष्य इसको प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक जीव जो चीज प्राप्त करने के लिए चाह करता है उसके पीछे कुछ त्याग करना पड़ेगा, तब फिर कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन ये संसार में जो सबको बांध के रखा है वो है बहुत बड़ा श्रृंखल है, जिसको त्याग पाना बहुत कठिन है। जा दुस्त जा, इसको छोड़ पाना ये बहुत कठिन है। किसके लिए कठिन है? ना दुर्मति भी, जिसकी मति अच्छी नहीं है, अर्थात विषय भोग में लिप्त व्यक्ति, ये काम बा विषय भोग को छोड़ना बहुत कठिन है। परंतु जो व्यक्ति सर्म कामहा, सर्म का मतलब है कल्याण, वा जो आत्यंतिक सुख प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति है, इसको चाहिए द्रुतम त्यजेत, बहुत जल्दी इसको त्याग कर देना चाहिए। तो सर्म काम की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और वीर राघव आचार्य बहुत सुंदर टीका रखे हैं। ननु स्व वीर्य निराहारत्वे बा विषय तृष्णा त्यागे न मुक्ति किं न स्यात् इति तत्राह चेति। सत्वं तृष्णा त्यागे मुक्ति स्यात् स एव न अस्ति तस्माद् ज्ञानेन तत् सुत्याग अतः तद् उपासद्य इति अर्थम्। सर्मकाम के अर्थ है सुखार्थी वयसा अनसनेन बाजिरियतः जरायाम आपनुवत। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं सर्व संघार्थः कालम अपि कामनया न संघारेण। काल सबको संघार करता है लेकिन काम को संघार नहीं कर पाता है। जदबा दुरु उपासनाया अपि कामनया उपसमय, कोई जब उपासना मार्ग को अपनाता है थोड़ा काम समित होता है। साधना आह, उसके लिए भी कुछ साधन है। परंतु जिरियते जरां प्राप्नुवती अपि, ये कामना को थोड़ा से जरा आता है साधन करने से भक्ति अपने, लेकिन पूरी तरह से इसको मृत्यु नहीं होती है, वो जीयते फिर जीवित रहता है। द्रियतः जराम पापनुवतिम अपि सर्म कामः स्वशत्रुणाम अपि मंगलम कामयते सा। तो वास्तविक जो आत्मा सुख की अभिलाषी है, जो अपने आत्म कल्याण चाहता है, तो इसको अनेक विचार करना पड़ेगा कि जीवन की श्रेय और क्या प्रेय है। तब फिर व्यक्ति असार को छोड़ करके सार को ग्रहण करता है। इसलिए कहते हैं कि तंग तृष्णा, विषय नहीं रहता है लेकिन विषय की जो प्रभाव रहता है, भोग की जो तृष्णा जिसको कहते हैं कपूर, आप जानते हैं कपूर आरती होता है, कपूर जल जाता है लेकिन उसकी वासना रहती है। तो उसी प्रकार ये शरीर जिन्न हो जाता है, व्यक्ति असक्त हो जाता है, परंतु जो काम इच्छा है, जो तृष्णा है, उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए कपिल देव अपने मां को कहते हैं प्रसंगम अजरम पासम आत्मनम कवयो विदु। जो आत्मज्ञानी है, विदु जानकार व्यक्ति है, वो जानता है ये जो आसक्ति है अजरम, उसको जरा नहीं आता है, लेकिन ये जो अवस्था है, भोग की जो इच्छा है, वो वास्तविक यही दुख की कारण है। प्रसंगम अजरम पास, इस पास मतलब क्या है, बंधन। इसमें सब लोग फंसे हैं, सभी जीव फंसे हैं। जस्त इंद्रिय गुपमिथवेंद्र मह सुकर्म बंधान रूप फल भाजन आतनोति। तो ये जो दो प्रकार की पास है, ये साधक के लिए भी एक पास है और जो साधनहीन व्यक्ति के लिए भी एक पास है। तो भगवद गीता में एक पास की बारे में वर्णन करते हैं जो आसुरी गुण से उत्पन्न होता है। आशा पास सतेरे बद्धा काम क्रोध परायण यहन्ते काम भोगार्थान अन्नायेन अर्थ संचयन। तो एक पास जो है कहते आशा वातृष्णा, उसमें सतेरे बद्धा सोंकट रूप से उसके गांठ लगा हुआ है, इसको खोलना बहुत कठिन है क्योंकि इसके जो गांठ है बहुत सूक्ष्म है। जैसे सूक्ष्म धागा में गांठ लग जाए उसको खोलना इतना इजी है गया नहीं है। तो इसी प्रकार जो भौतिक भोग की जो आशा है इसको खोल पाना बहुत कठिन है। कहते आशा पास सतेरी बद्धा काम क्रोधा, और उससे होता है काम और क्रोध अप्रतीज। लेकिन साधकों के लिए भी एक पास है, कुंती महारानी सूचित करती हैं। स्नेह पास इमं छिंदी दृढ़ पांडुसु वृष्णिसु। एक स्नेह है अटैचमेंट, इसको भी तोड़ पाना बहुत कठिन है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि मैं उन गोपियों को वंदना करता हूं क्योंकि उन्होंने उस स्नेह पास को भी तोड़ दिए, खोल दिए। जा दुस्त जा आर्ज्य, जा दुस्त जा आर्ज्य पथम, आर्ज्य पथ भी, आर्ज्य पथ मतलब आचार्य उपासना आदि शास्त्र उपासना। भेजे मुकुंदम पदबिम स्मृति भी विमुग्या आर्ज्यम पथम च हित्वा। जय श्री श्री गौरनिताय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो किस प्रकार उन्होंने तोड़ दिए, ये भी एक ग्रह श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब है जंजरी, चेन, स्नेह अटैचमेंट। लेकिन भगवान की उपासना के लिए जो तीव्र लालसा है, वो तीव्र लालसा की वजह से ये गांठ टूट गया। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया खियन्ते च कर्माणि दृष्ट एव आत्मनेश्वरी आत्मनेश्वरी। क्योंकि काम की जो उत्पत्ति स्थल है वह है भगवान, जन्मदस्य जतः। तो यदि उस काम भावना को यदि कृष्ण के साथ कनेक्ट किया जाए तो फिर काम नहीं रहता है। कामं कृष्ण सेवार्पणे, कामं च दास्यं न तु कामकं मया, जत उत्तम श्लोक। यदि उत्तम श्लोक के साथ ये कामना भगवान श्री कृष्ण के साथ इस कामना का युक्त हो जाए तो फिर और काम नहीं रहेगा। परंतु आचार्य लोग कहते हैं, कहते दुष्ट जा क्यों कहा गया है, कहते विषय भोग की जो तृष्णा है वो अग्नि की जोड़ा दे थे वो बढ़ती रहती है। क्योंकि यहां पर दो चीज होता है, संगठन होता है। जय ही संस्पर्शा जा भोगा, भोग की इच्छा है और इंद्रियों को भोग करने के लिए उस वस्तु मिल जाता है। तो दोनों की कनेक्शन होने पर वो फेरी भोग की और तीव्र लालसा बढ़ जाती है, उसकी जोड़ा बढ़ जाती है। घी अलग रखो और आग को अलग रखो तो ठीक है, लेकिन आग के साथ फिर घी को आप मिला दिए तो फिर जलेगा ना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, जय ही संस्पर्श सजा भोगा दुख जो नये वते आद्या अंत बंत नते सु रमते बुधा। बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान लोग ही भजन करते हैं और काम को जीत सकते हैं, और बुद्ध व्यक्ति काम के द्वारा परास्त हो जाते हैं। इसलिए एक बार एक असेंबली बैठा था शायद अकबर बीरबल को बहुत सारे बुद्धिमान प्रश्न पूछते हैं। उसमें वो एक प्रश्न पूछे थे कि काम कब नष्ट होता है, तो वो कहते मृत्यु पर्यंत वो रहता है। कहते नहीं 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 नहीं, जरावस्था आने पर तो काम समित हो जाता है। कहते नहीं, तो इसके प्रमाण प्रस्तुत करते हुए एक बार एक व्यक्ति मृत्यु की सज्जा में था, तो उनको सब देखने के लिए लोग आए थे, और अपने बेटी वो खड़ी थी, लेकिन मृत्यु सज्जा में सोए हुए व्यक्ति की नजर कहां पर थी? उनके जवान बेटी पर। कहते जो काम के आकर्षण बहुत तीव्र है, इसको पराभव नहीं होता है, इसको कभी जरा नहीं आता है, परंतु एक उपाय है। भगवान कहे कि ये तो मेरे द्वारा सृष्टि है, लेकिन मामा श्रीता जरा मरण मुख्याया मामा श्रीता जतंती ये। लेकिन जो प्रयत्न करता है इस जरावस्था को पार करने के लिए, तो भगवान के आश्रय लेना पड़ेगा। किस प्रकार आश्रय? नहीं कि विषय के आश्रय, क्योंकि विषय इंद्रियों के साथ युक्त होने से ये काम इच्छा जागृत होता है। इसलिए कहते जो व्यक्ति विषय को भोग करना चाहता है, इसके निवर्तन के लिए विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यासम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान इंडिकेट करते हैं निराहारस्य, यदि आप उपवास आदि करते हैं तो काम थोड़ा कमजोर हो जाता है, परंतु पूरी तरह से नहीं। जैसे अभी घास है, अभी बारिश नहीं मिल रहा है, मिट्टी में क्या सूख जाता है, लेकिन ज्यों ही बारिश होगा फिर वो हरा भरा हो जाता है, फिर विषय के साथ संजोग होने से फिर काम इच्छा फिर प्रबल हो जाती है। इसलिए भगवान कहते निराहारस्य ना, परंतु एक उपाय है रसवर्जम रसप्यासम अफी अस्य रस्य, ये रस को आप त्याग करना है। वर्जम तो वर्ज रस, श्रेष्ठ रस को आपको पीना पड़ेगा, हायर टेस्ट। कैसे पीना चाहिए? ना परम दृष्ट्वा, दृष्टि बहुत उन्नत होना चाहिए, अभिज्ञ होना चाहिए, तब फिर इसमें निवर्तन आता है। तो जब तक कोई व्यक्ति किसी आदत में पड़ गया है, जैसे कोई शराबी व्यक्ति शराब पीने में उसके आदत पड़ गया है, अब जानते हैं कि एक ऊंट उसको स्वाद मिलता है कांटा खा करके, वो तब तक वो कांटा को नहीं छोड़ सकता जब तक उनको महसूस नहीं होगा कि यही कांटा ही मेरे जीवा से खून निकाल करके मुझे स्वाद प्रदान करता है, तब तक उसकी निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए एक्सपीरियंस, तो हायर टेस्ट का जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक व्यक्ति इस लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो टेस्ट है, इसलिए उनको कहा गया है जौनागार। भोग की इच्छा, जाही जही संस्पर्श जा भोगा दुख जोनय एवते आद्य अंतवंत। केवल स्पर्श इच्छा, तीव्र इच्छा, और ये तीव्र इच्छा किसके अंदर होता है ज्यादा, किस प्राणी के अंदर आप जानते हैं? हाथी। हाथी बहुत मूढ़ मति होता है, शरीर बहुत मोटा है परंतु बहुत मूढ़ता है। अलग अलग हमारे जो सेंसेस हैं उसमें जो वसीभूत हैं, जैसे मछली जिह्वा से वसीभूत हैं, हिरन ये श्रोता सुनने की शब्द की पर अटैच्ड हैं, फिर नाक से कौन है बटरफ्लाइज मधुमक्खी, तो उसी प्रकार हाथी जो है वो स्पर्श इंद्रिय से बंधा हुआ है, और हाथी को पकड़ने वाले व्यक्ति इसको क्या बोलते हैं जो हाथी को पकड़ते हैं? महावत। तो वो जंगल जब जाते हैं हाथी को शिकार करने के लिए, एक बहुत गहरे गड्ढा खोदते हैं, खोदने के बाद एक फीमेल हाथी को उसके ऑपोजिट साइड में रखते हैं और एक वृक्ष के नीचे उस फीमेल हाथी को बांध करके उसका आवाज, हाँ उस हाथी का आवाज सुनाते हैं उस मेल हाथी को, और वो इतनी प्रमत्त हो जाता है स्पर्श इंद्रिय के लिए, वो दिखता नहीं है गाढ़ा को, उस गाढ़ा के ऊपर थोड़ा सा सूखा घास कुछ डाल देते हैं और ये हाथी उसमें गिर जाता है। इसलिए उद्धव को भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं तो पहले इन इंद्रियों को संयमित करो, और गीता में भगवान भी अर्जुन को यही बात बतलाए हैं, तस्मात् तु इंद्रियाणि आद्यो नियम्य भरतवर्षवः पापनं प्रजैहेनं ज्ञान विज्ञाननासनम्। अरे विज्ञान को विनष्ट कर देता, कहता हाँ क्या विज्ञान है, कहते एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति यदि इंद्रियों को थोड़ा से छूट दे देता है वो भी गिर जाएगा। असले नियम्य संयमित रखो, क्योंकि वहीं से ही पाप के उद्गम होता है। इसके तीन रेसिडेंस भगवान बताते हैं, काम की जो आश्रय स्थल है क्या क्या है, इंद्रियाणि मन बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतर् विमोहयते स, इससे ही जीव मोहित हो जाता है, उसके विज्ञान भी नष्ट हो जाता है। सभरी मुनि कितने प्रयत्न किए अपने इंद्रियों को संयम कर रखने के लिए, परंतु मछली की संभोग देखकर कि उनके मन की वासना जागृत हो गई, और मांधाता की एक कन्या नहीं 50 कन्या के साथ उन्होंने विवाह किए, और फिर दूसरे के उदाहरण है विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग, उनके पिता ने कितनी सावधानी के साथ जंगल में उसको रखे थे कि कोई मनुष्य के दर्शन न करे, कोई स्त्री ना कोई पुरुष, क्योंकि उनके जन्म भी जंगल में हुए था एक हिरण के शरीर से। परंतु रोमपाद जो राजा हैं, जब उन्होंने वेश्याओं को भेजे तो उनकी तीव्र तपस्या साधना संयम सब नष्ट हो गए, फिर श्रांता से उन्होंने विवाह किया। तो ये सब प्रसंग क्यों श्रीमद् भागवतम में है, ये काम के विषय में क्यों है? हाँ हाँ, जब भी कोई एक राजा किसके साथ युद्ध करने के लिए जाता है तो तुरंत अपने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता, पहला क्या करता है, पहले वो जानता है, जानकारी लेता है कि उस हमारे शत्रु का कितना बल है और किस उपाय से उसको परास्त करना है, किस प्रकार बल से। इसलिए दूसरे पक्ष बात, शत्रु की बल को जानना एक योद्धा की क्या है, पारदर्शिता है। तो उसी प्रकार जो कृष्ण प्रेम चाहता है, चाहते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि काम जगत कितनी शक्तिशाली है और हमको किसके आश्रय लेना चाहिए। राजा जब युद्ध करता है गॉड के आश्रय लेता है फट, है ना, जिससे कि वो सुरक्षित रह करके वो शत्रु के साथ युद्ध कर लेता है। तो उसी प्रकार जो साधक हैं, यदि वो चाहता है कि शत्रु पर, जही शत्रु महाबाहु काम रूपम दुरासदम, ये सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान बार बार कहे हैं कि बड़ा शत्रु यही है और ये संसार में कोई अपना शत्रु नहीं है, अपना शत्रु क्या है, काम। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, अमहान भक्खी है, रजगुण से उत्पन्न होते हैं लेकिन इसके सोल्जर बहुत बलवान हैं। रजगुण समुद्भव महासन महत पापम, विधि है ना यह बैरी नाम, यही जाना बैरी कौन है, यही है तृष्णा। इसलिए भक्ति पथ में पथिक साधक वो हमेशा ही एक मार्ग को ध्यान देता है जिस मार्ग में शत्रु प्रवेश न करे, वो क्या है, दास्य कामं च दास्य। हमेशा ही इसको चेंज करना चाहिए सेवा के भाव। तो बिल्लो मंगल ठाकुर के पास भी काम आए, हरिदास ठाकुर के पास भी माया देवी आई परीक्षा लेने के लिए, लेकिन क्या था उनके पास, वेपन्स क्या था, वो जीत लिए। बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं कि जब मेरी मन मेरी मति आपके दिव्य रूप की स्मरण करने में सक्षम हो जाए, स्थिर हो जाए, तो फिर ये काम मुझे प्रभावित नहीं करेगा। भक्ति त्वयि स्थिरचरा भगवान यदि स्यात् दैवेन स्फुरतु दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति मुकुलिंतंजलि सेवतास्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम, ये सब लाइन पर खड़े रहते हैं। इसलिए भगवान उस कामदेव को भी रासलीला में परास्त किए, इतनी सुंदर रूप कामदेव भी आए थे भगवान को मोहित करने के लिए, काम के बाण चलाए, लेकिन स्वयं कामदेव भी मोहित हो गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या कहा जाता है, मदन मोहन, मदन को उन्होंने मोहित कर लिए। तो उसी प्रकार जो तीव्र तपस्या आदि के द्वारा इस काम को संयमित कर लेता है, परंतु उत्कृष्ट प्रेम जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक ये काम पूरी तरह से वशीभूत नहीं होता है। नर नारायण तपस्या किए, बहुत तीव्र तपस्या किए, और ये तपस्या के द्वारा नारायण ऋषि कि भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य, हालांकि भगवान नारायण और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम माधुरी है, जो लीला माधुरी है, तो कितने उत्कृष्ट हैं कि ये भगवान की अन्य अवतारों को भी आकर्षित कर लेता है। तो जैसे महाविष्णु ये भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए, नरनारायण को दर्शन करने के लिए वो ब्राह्मण की पुत्रों को क्या करते थे, मार देते थे, वो चोरी करके ले लेते थे, मारते। तो उसी प्रकार नारायण ऋषि के अंदर भगवान श्री कृष्ण की ये जो श्याम सुंदर, ये जो ब्रजवेश को दर्शन करने के जो उत्कंठा, और उसी समय इंद्र ने सोचे, अरे ये दोनों इतनी तीव्र तपस्या कर रहे हैं तो मेरे आसन को छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने अप्सराओं को भेजे, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं उनको तपस्या में बाधा डालने के लिए भेजे। लेकिन जब ये अप्सराएं यहाँ आए तो नरनारायण ऋषि इतने और अधिक सुंदरी सुंदरी इतनी अप्सराएं बा दिव्य स्त्रियों को उत्पन्न किए, तो ये भी सब आकर्षित हो गए। तो आखिरी आखिरी में इंद्रदेव परास्त होकर के नरनारायण के संरक्षण में आए, उनके शरण में आए और प्रार्थना किए, तो फिर नरनारायण ऋषि उनको रंभा, उर्वशी आदि जितने सब स्वर्ग की जो अप्सरा हैं उनको प्रदान के ले लो, तुम ले उसको भोग कर प्रदान के। तो भगवत सुख आस्वादन करने वाला व्यक्ति कभी ये काम में विचलित नहीं होता है, इसलिए हरिदास ठाकुर को भी विचलित नहीं हुए। कौन भेजा था उस वेश्य को, रामचंद्र खान। तो हरिदास ठाकुर क्या सिखाए अपना आचरण से, कि जो व्यक्ति तत्पर रहता है अपना साधना के लिए, तो उसको काम सता नहीं सकता। एक महात्मा गांधी जी के का आंदोलन था ये गौ रक्षा के बारे में, तो 1931 में वो दिल्ली आए थे, बहुत बड़े बड़े सब साधु संत लोग सब आए थे इसको आंदोलन के लिए। तो उस समय देखे कि एक व्यक्ति बहुत तेजस्वी है, तेजस्वी साधु, तो उनके पास एक प्रेस रिपोर्टर आई, लेडी, और उनके पास आकर के कही, महाराज आप लोग साधु संत हैं, आप लोग तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बात मैं जिज्ञासा करना चाहता हूँ, बहुत इंटरनली बात, आप मुझे सच सच बताएंगे? तो उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो उन्होंने पूछी क्या बताइए कि उम्र आने पर सबको काम बासना सताता है, तो क्या आपको काम बासना नहीं सताता है भाई, ये काम भावना कभी नहीं आता है? तो वो संत जी क्या बोले, कहते हैं माता सच बताऊं कि मेरे पास इतनी काम है, इतनी काम है, उस काम को आने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। कि व्यक्ति जब हमेशा एंगेज रहता है कृष्ण सेवा में, तो वो वासना कब प्रवेश कर सकता है? इसलिए भगवान बताते हैं सततम जोगी संतुष्टम सततम जोगी जतात्मा दृढ़ निश्चय। जो सतत सेवा परायण रहता है तो फिर ये वासना कभी प्रवेश करने के लिए कभी अवसर प्राप्त नहीं करता। और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, सैटिस्फिकेशन, कल जैसे आप सुने थे कि प्रभुपाद का लास्ट लेसन क्या था, मेरा कुछ इच्छा नहीं है, आई हैव नो डिजायर। और प्रभुपाद को जब भी हार्ट अटैक होता था, प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ी है, तो प्रभुपाद बहुत लाउड वॉइस में कहते थे, अगर यदि मैं अभी शरीर छोड़ू मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तो भगवत धाम जाऊंगा क्योंकि मैं सतत तत्पर हूं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए मुझे मृत्यु के भय नहीं है। तो काम का दूसरा रूप है मृत्यु, जानते हैं मृत्यु इसलिए होता है, लेकिन परीक्षित महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए थे भगवत कथा श्रवण करके, और तक्ष्य को उनको मान नहीं पाया, वो तो पहले ही मुक्त हो चुके थे। ध्रुव महाराज वही कहे कि स्वामी कृतार्थम बरंग नजाच है, आई एम फुल्ली सैटिस्फाइड, आई डोंट डिजायर एनीथिंग। तो ये जो इच्छाओं को वास्तविक जीतने की एक साधन है, इन्हीं भक्तों का दृष्टांत, काचं अविचिन्य अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थ से बरंग न जाच, और कुछ इच्छा नहीं है, मुझे आपकी दर्शन रूपी दिव्य रत्न मुझे प्राप्त हो गया, मैं तो सिर्फ एक कांच के टुकड़े के पीछे दौड़ रहा था, वो क्या है, मुझे पोजीशन, मुझे पोस्ट चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसा स्थितोऽस्मि, मुझे तो वो पोजीशन चाहिए था जो कि मेरे पिताजी को ना दादाजी को मिला है, उससे भी हायर पोजीशन, परंतु आपकी दर्शन करके मुझे उसी प्रकार दिव्य सुख की अनुभूति हो रहा है, मुझे लगा कि जो मेरा पिछले जो अभिलाष था, टूटा हुआ शीशा कांच। तो वास्तविक भक्ति हमको हायर टेस्ट देता है, रस व्यर्जम, हाँ, लेकिन वो तत्पर साधक के लिए जो दैन्यता आदि को इस साधना के साथ ऐड करता है, उसको तुरंत इस अनुभूति प्राप्त होता है कि मैं एक तुच्छ किट की तरह हूं। दैन्य आत्मा निवेदना गोतृप्त बारणे अवश्य रखिवे कृष्णा विश्वास पालने। और एक अब शायद नरोत्तम दास ठाकुर के एक गीत हैं, बहुत सुंदर गीत है, पंक्ति हैं, जिसमें यही बता गया है कि मन को कैसे भगवान की रस में, रसराज के रस में निमज्जित करना चाहिए। वो कह रहे हैं, हे मन रूपी भौंरा तुम उसके पास जाओ, अमला कमला क्या है, भ्रमरा तो उड़ी जा रहे, कमल रूपी चरण के पास तुम उड़ जाओ, कमला से बीता कोमल चरणे निरंतरे प्योथारे, अमला कमला चरण कुमाना भ्रमरात ओडी जारे। जो कमल का जो सुगंधी है वो केसर से निकलता है, लेकिन भौंरा उस सुगंधी से आकर्षित हो जाता है, वो मक्खियां नहीं जाते हैं, भौंरा जाता है, अर्थात जो रसबीत है। श्रीमद् भागवत की प्रारंभ में व्यासदेव क्या कहते हैं मंगलाचरण में, रसिका भुवि भावुका पिबतम भाव भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका रसिका रसबित। जो रस के विषय में जिसके ज्ञान है और भुवि भावुका जो विश्लेषण करने में बहुत एक्सपर्ट है, तो इस रस को वो निरंतर पान कर सकते हैं रसिक बन करके। मोहो अहो रसिका भुवि भावुका आलयम, आलय मतलब मूर्छा हो जाता है पीते पीते, फिर भी मूर्छा खोलने के बाद फिर पीते हैं मोहो। और आलयम का मतलब लय का मतलब है मृत्यु, मृत्यु पर्यंत इसको पियो, चिंता मत करो। इसलिए जो अभिज्ञ है, जो रस शास्त्र में अभिज्ञ है, और दोनों चीज विद्या और अविद्या को जानना चाहिए, ये रस आपको कितना रसिक बना सकता है, कितना ये रस का दम है बताइए। हम कहें कि हम भोग कर लिया, अरे भोग नहीं किए आप, भोग ने आपको भोग लिया, आपकी जवानी को भोगा, आप कहें आप भोग ही हो गए। भोग ने हमको भोग लिया, हमारी जवानी को भोगा, लेकिन हमारा चेतना नष्ट हो गया है। तया प्रहूत चेतसाम भोग ऐसर्ज्य प्रसक्तानाम तया प्रहूत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस समाधि में स्थित रह करके इस रस को पीना चाहिए, उस रस बहुत एलिवेटेड है। तो ये जो भौंरा का उपमा दे रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कहते भौंरा को आभास होता है कि इस कमल के अंदर बा इस फूल के अंदर रस है। दूसरे लोग उसको क्या देखते हैं, इसका रंग देखते हैं, उसकी रूप देखते हैं, परंतु भौंरा उस गंध रूप को देखने के लिए नहीं जाता है। भौंरा किस लिए जाता है, उस रस को पीने के लिए। तो भौंरा पहले जाकर के कहां बैठता है, उस पिटल के ऊपर, उस कमल की पंखुड़ी के ऊपर, लेकिन वहां से फिर उड़ उड़ के फिर कहां तक आ जाता है, केसर। और जब केसर में वो बैठता है उसको फुली सेटिस्फाइड होता है। इसलिए परम पूज्य गौरगुंद महाराज वो कहते हैं कि जो श्री गुरु की उपासना करता है, श्री गुरु की चरण कमल भी है, कि जब ये मन रूपी भौंरा स्थित हो जाता है वहां उस उपासना में, गुरु उपासना में, तो फिर उस कमल के अंदर वो प्राण त्याग कर देता है, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि शाम को कमल की पंखुड़े बंद हो जाते हैं, है ना, सूर्यास्त होने से। परंतु ये भौंरा उस कमल से बाहर नहीं निकल पाता है, हालांकि उस भौंरा के अंदर इतनी शक्ति है, बड़ा बड़ा लकड़ी को भी काट देता है, छेद कर देता है, लेकिन कमल की जो पत्ते हैं बा उनकी पंखुड़ी है बहुत सॉफ्ट है, परंतु उस भौंरा उसको छेद नहीं करता है। क्यों, प्रेम। तो उसी प्रकार ये जो काम है, आप देखे कि हमारे श्रीमद् भागवतम में जो गोलक वृंदावन बनाए हैं, तो उसमें देखे हैं कि एक कमल, और कमल के अंदर ही भगवान राधा कृष्ण के लीला है। तो जब तक हमारी ये मन रूपी कमल उस राधा कृष्ण लीला तक नहीं पहुंचता है, तब तक ये जो थर्ड क्लास जो रस है उससे मन की निवृत्ति नहीं होती है और उत्तर उत्तर बढ़ते जाता है। इसलिए पूर्ण संतुष्टि है जीव को उस लीला को आस्वादन करना, और वही रस को समझने के लिए भगवान ने ये संसार में क्या किए हैं, ये उल्टा रस दिए हैं। ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम असस्तम प्राहुरव्ययम् चन्दांसिजस्य पर्णानि जस्तम वेद सवेद विद अधस्य ऊर्ध्वम प्रसुतस्तस्य शाखा। तो ये रिप्लिका है उस आध्यात्मिक रस का, ये रिप्लिका है लेकिन ये टेम्पररी है। ये तब तक रहता है ना जब तक सनशाइन है तब तक छाया है, करेक्ट। ऐसे बिल्डिंग का छाया तब तक पड़े रहेगा ना जब तक सनशाइन है, सूरज का रोशनी है, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद इसका अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन एक इटरनल रस है, बाय इटरनल रूप है सच्चिदानंद। क्योंकि इस रूप के साथ जितने भी हमारे कनेक्शन हैं, कनेक्टिविटी है, ये सब जराग्रस्त हो जाता है, काल से प्रभावित हो जाता है। एक लोक है इसमें हाटकेश्वर महादेव है, उसकी रस पी करके व्यक्ति हाथी जैसे तेजियान बन जाता है, बलवान बन जाता है। उस संभव करने के लिए उसको बहुत रस मिलता है, लेकिन क्या है तो वहां पर भी मृत्यु है। काले न सर्वत्र गंभीर रंगसा, सब जगह व्याप्त है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यही रस को फिना चाहिए। हाँ, जैसे श्री राम जमुनाचार्य कहते हैं, जदबद्धि मम चित चेत कृष्ण पदार बिंदयो नव नव रस धाम निरंतुम अच्छित। भौरा जैसे एकदम रमण कर जाता है और पक्षी उनका उड़ता नहीं है। अब देखो एक बार टेस्ट मिल गया ना, जब तक पूरा टेस्ट नहीं मिलता है भौरा इससे उड़ता है, लेकिन उसको मिल गया सोर्स, मिल गया पूरा, हाँ इसमें है पूरा, और उसमें पूरा सूंड लगा देता है और फिर पंख नहीं उड़ाता है। तो इसी प्रकार जब इस उत्कृष्ट रस की आस्वादन करता है साधक, तो फिर वो मन इधर उधर भागता नहीं है, तर बहु शाखा नहीं होता है। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक कुरुनंदना, पूरा डीपली मर्ज्ड, इसको कहते समाधि। समाधि तो ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए सर्म कामः, जो कल्याण की इच्छुक हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं, द्रुतम त्यजेत, इसको मुख विकारम तो क्या गंध है, जैसे कि आपका बेड स्मेल आता है, दूर भागते हैं, है कि नहीं। कोई डेड बॉडी पड़ा है, मरा हुआ पशु पड़ा है, तो आप जाते हैं तो क्या वो खड़े रहेंगे, बहुत अच्छा हाँ स्मेल आ रहे हैं। तो इसी प्रकार इसको एक्सप्लेन कर, थूक फेंकना चाहिए, लेकिन कब, जो आपको हायर टेस्ट मिलेगा। अभी तो इस रस को लेने के लिए पूरा जीव लालायित रहता है, घुमाता बकरा जैसे, बकरा देखे ना हमेशा जीव घुमाता है और हमेशा उसके ही अधिकार रहता, मैं ईश्वर अहं अहं भोगी। तो यही भावना ही बकरा भावना, हाँ जब तक रहेगा तब तक हम हायर टेस्ट प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो प्रसंग है वही है बकरा बकरी के प्रसंग है ना, एल गीत जो है बकरा बकरी, बकरा होने पर कसाई के पास जाना पड़ेगा कटिंग, जहा दुर्मति। इसलिए मति को उन्नत करना चाहिए, जहा दुर्मति, कृष्ण के पास मति लगाने से ये शुद्ध होता है। मतिर्न कृष्ण परतो सतो वाह मिथ्यो विप्रदेत गृह व्रतानम अदांत गोभी विसतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्बित चर्वणानं। वो व्यक्ति जो कृष्ण में मति नहीं लगाया है, परतो सतो वा साधु संत कहने पर भी मिथो, क्योंकि उनकी एकमात्र डिजायर क्या है, हाँ गृह में ही सुखम ही तुच्छम, उसको ही श्रेष्ठ मानता है। इसलिए कभी कहता है ईस्ट और वेस्ट, माय होम इज द वेस्ट, क्योंकि उससे मुझे बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख, परम सुख। लेकिन ये सूखा हुआ है, सुख सूखा नदी, फल्गु नदी है ना, ऊपर सूखा है, और कपटी व्यक्ति वो सूखा नदी में फंसता है ना, कपटी है ना, भीतर रखता है वासना तो भीतर है और बाहर को दिखाता है मैं एकदम उदास हूं। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, प्रभुपाद बोलते हैं कि इसलिए फल्गु का मतलब है कि फल्गु नदी ऊपर ऊपर से तो सूखा दिखता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा खुदाई करो पानी निकलेगा। विष इंद्रिय संजोगा जास्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सवोच्यते। इंद्रियों को बस बगुला जैसे बाहर देखा है लेकिन अंदर क्या है, विषय भोग की तीव्र ललसा। मछली आते ही बगुला चांस नहीं खोता है, तुरंत मारता है। तो इसी प्रकार कभी भी विषय आ जाए इस पास में, क्या नेक्टर है, क्या नेक्टर, छोड़ नहीं पाता। इसलिए फालतू वैराग्य नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु उपदेश दिए, क्या उपदेश दिए, किसको दिए, सनातन गोस्वामी को, वैराग्य ना होया लोक को दिखाइया जथा योग्य, न रघुनाथ दास गोस्वामी को, जथा योग्य विषय भोग अनासक्त होया। भागवतम में भी दूसरा एक दृष्टांत है, जैसे कहते हैं घी डालने से आग जलता है, और एक दृष्टांत है कि बहुत सारी घी डाल दो तो आग बुझ जाएगा, तो भोग करो लेकिन उस भोग के एक्सपीरियंस करना चाहिए भक्ति के साथ। अगर भक्ति रस का आस्वादन नहीं किए वो छोड़ नहीं सकता है। इसलिए जराया अपी शरीर असमर्थ हो जाता है परंतु उस वासना तीव्र रहता है। इसलिए इस प्रसंग के द्वारा हम सबसे सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि सर्व काम, यदि आप कल्याण चाहते हो, ये भक्ति के रस आस्वादन करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, द्रुतम त्यजेत, तुरंत इसको छोड़ दो। आओ जो व्यक्ति छोड़ता है वही शांति उसको प्राप्त होता है। त्यागत शांतिर अनंतरम, त्यागत शांतिर अनंतरम। परम पूज्य राधाकुंद महाराज कहते हैं कि घर बनने के पहले टॉयलेट बनाना पड़ता है, क्योंकि त्याग बहुत नेसेसरी नहीं है कि किचन बन जाए पहले, पहले टॉयलेट बनता है कि नहीं, होटल से खा सकते हैं। हम लोग थे गुरुड़ा में थे, महाराज वो मायापुर संकीर्तन भक्त आए थे 2000 में, वो देवकनंदन प्रभु के गांव में कथा चल रहा था तो टिकारी में गए थे, तो उस समय महाराज यही बात बताया था कि जितने साधक त्याग करता है तो शांति का अनुभव करता है। और एक बाज पक्षी वो मांस उठा करके जा रहा था, उसके पीछे सब पड़ गए सब पक्षी, लेकिन जी ही उन्होंने मांस के टुकड़ा को गिरा दिया तब फिर सट। तो भोग के लिए आप थोड़े से लेते हैं अपने चोंच में, लेकिन आप देखो कितने शत्रु हो जाते हैं इसके वजह से, सारे दुनिया आपके पर नजर डालते, कहेगा ये भोग करता है, ये भोग करता है, ये देख ये देख। असले अनासक्तस्य विषयांजतहम उपजुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। पहले अनासक्त रहो, इतने अटैच ना। और कलयुग में लोग इतने अटैच्ड हो गए, इतने अटैच्ड हो गए, त्याग करने वाले चीज को भी घर में कर दिए अटैच बाथरूम। क्या है? अटैच बाथरूम। उसको भी त्याग करने वाले को भी रूम के अंदर अटैच्ड है। तो इसलिए एक कलयुग के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखे कि कलयुग में इस काम को त्याग करना बहुत कठिन है। इसलिए ये सारी प्रसंग की प्रस्तावना की गई है कि कितनी सावधानी के साथ भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण। एक समय ये जोलेनेस राधारमन महाराज प्रवचन दिए थे और उन्होंने बोला कि एक बार यमराज जो है वो भगवान के पास शिकायत किया कि हमारा जो सर्विस है थैंकलेस टास्क, सभी लोग हम जो काम करते हैं अब उसका बख्शिश में गाली गलौज मिलता है, कुछ फायदा नहीं है, मैं इसे रिजाइन करना चाहता हूं। तब भगवान विष्णु जो है उनको एक जगह लेकर गए, एक बड़ा किला था और किले पर एक सिक्योरिटी गार्ड गश्त दे रहा था रात में, वहां से उसको झपकी लग गई और नीचे गिर गया। नीचे गारगोटी थी जैसे तलवार के धार जैसे, उसका धार जो है सर से कट गया पूरा, थोड़ा सा चमड़ी अटक गई और नीचे पर तड़प रहा है। तो तुरंत राजा दौड़ के आया, बोला आपको क्या चाहिए? आपको सुंदर श्री चाहिए, धन चाहिए, क्या इच्छा है? वो बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मौत चाहिए, मौत। मैं तड़प रहा हूँ, कष्ट से निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे मौत चाहिए। और तब भगवान विष्णु यमराज को बोले, देखो ये किसी को नहीं चाहता, खाली आपको ही चाहता है। और आगे चल के कोई जब मरेगा तो उसका खांसी आएगा, बुखार चढ़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे कारण बनेगा जिसके कारण वो निमित्त होगा इससे मरा है, आपको कोई गाली गलौज करेगा नहीं। हरे कृष्ण।
जमराज के थैंकलेस जब नहीं है, थैंकफुल जब।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा उदाहरण बताया ऊंट का कि उसको जो स्वाद आता है कांटे का, मतलब अपना खून का स्वाद आता है उसको, तो और फिर जब वो समझता है कि मेरा मुंह घायल हो रहा है तब वो फिर बंद करता है चबाना। और हम भागवतम में भी देखते हैं कि अवंती ब्राह्मण जब उसको बहुत विपदा आई तब उसको फिर रियलाइज हो गया कि ये मेरे दुखों का कारण क्या है। तो ऐसा है क्या कि विपदा अपने आप में ये रियलाइजेशन दे सकती है कि संसार अच्छा नहीं है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान गीता में कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, लेकिन उसके पहले कहे समहम, मैं सबके लिए समान हूं, परंतु फिर भी कहते हैं जय भजन्ति तू मांग भक्त्या, मेरी भजन करते हैं भक्ति करते हैं उनके लिए मैं कुछ विशेष हूं। तो विशेष होने के कारण सुहृद भी हैं, हितैषी हैं, हित करना चाहते हैं। तो इसलिए भक्तों को हमेशा हित करने के लिए भगवान एक रखे हैं, क्या है? विपत्ति। अगर किसी भक्त का जीवन बहुत इजीली जा रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, खुश है, केम छो मजा मा मजा नहीं, तो वो भक्त इतने प्रगत नहीं है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े प्रगत भक्त हुए हैं, उन्नत भक्त हुए हैं, उनके लिए विपद अनिवार्य है। विपद संतुन शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनं जस्मान् आपुनः भवदर्शनात्। फिर वो जमराज की किला में नहीं जाएगा, आपुनः भवदर्शन। जो इस विपत्ति को देखता है ना, पल पर पदम पदम जद विपदम न तेसाम समाश्रिता यह पाद पद लप पलपम, तो वही विपत्ति को वो समझ लेता है कि इस विपत्ति वास्तविक मेरी संपत्ति है, मेरे आंख खोलने के लिए। क्योंकि व्यक्ति के पास जब धन ऐश्वर्य रहता है, एकदम मदमत्त रहता है, नशा में रहता है, वो सत्य को नहीं दिख पाता है कि कौन मेरी हितेशी हैं, कौन मेरे स्वजन हैं, कौन मेरे भलाई चाहते हैं, कौन मेरी आत्मीय हैं। लेकिन ज्यों ही विपत्ति आती है, तब तो फिर सब चीज उनके सामने स्पष्ट हो जाता है। इसलिए जो श्रेय साधक हैं, मां भक्त हैं, उनके लिए निश्चित भगवान फिक्स करके रखे हैं विपत्ति। तो जितनी सारी भक्तों का आप दृष्टांत ले लीजिए, पांडव से लेकर के ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। और ये विपत्ति किससे आएगा, प्रभुपाद लिखते हैं, परित्राणाय साधनां विनाशाय च दुष्कृताम, उसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, अपने आत्मीय स्वजन के द्वारा मिलेगा उस विपत्ति, उस दंड, तब फिर आपके आंख खुलेगा। क्योंकि उनके प्रति आप अटैच्ड है ना। प्रहलाद को कोई दंड नहीं दिया था, अपने ही पिता ही दिया। और देवकी को कौन सताया, अपने भाई ही सताए, कितने प्यार कर रहे थे, मैं रथ चला के जाऊंगा। इसलिए विपत्ति किसके द्वारा आएगा, अपने आत्मीय स्वजन के द्वारा। तब फिर स्नेह पास इमं छिंदी तो ही मैं अनन्य विषया मति मधिपति सक्रोत, तो अनन्य फिर ही भावना आएगी भगवान के प्रति। This is the key word. So ready to face this calamities. अगर कोई तैयार है तो ठीक है, नहीं तो जीवन संग्राम में हार जाएगा। ये एक प्रिपरेशन विपत्ति को फेस करने के लिए, क्योंकि संग्राम भूमि है, कभी हाथ पैर कट सकता है, जान भी जा सकता है, लेकिन तैयार रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मुझे लड़ाई करना है, लेकिन फिक्स ये भी रखो कि मुझे मरना भी है इसमें, मृत्यु के लिए तैयार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग ने धैर्य पूर्वक श्रवण किए, क्षमा कीजिए कुछ त्रुटि रह गया। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।